साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज पक्ष विपक्ष कार्यक्रम के तहत आज हम विशेष रूप से बातचीत करने जा रहे संविधान से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर। और इस चर्चा में हमारे साथ विशेष रूप से आमंत्रित है समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित किया है और गांधीवादी लोहियावादी विचारों को आत्मसात कर संपूर्ण भारतवर्ष में जन सेवा के लिए निरंतर संघर्षरत है। ऐसे रघु ठाकुर जी जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार
जी। नमस्कार दिनकर जी। नमस्कार, मोबाइल वाणी के लिए आभार।
हाँ भाई साहब, हम आपसे जानना चाह रहे आज कि अभी हाल ही में नए संसद में जो सत्र संपन्न हुआ, उस सत्र में संविधान की जो मूल प्रतियां है दी गई, उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाए जाने की चर्चा है संपूर्ण देश भर में हो रही है। इस संबंध में आप इसे किस नजरे से देखते हो और इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो बातचीत संस्था है RSS, इसका विश्वास भारतीय संविधान में ना पहले था और ना आज है। और इस संविधान को बदल करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, उसके अनुकूल संविधान को बदलना चाहते हैं। 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था और ये दो शब्द जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, जो कि 1950 में नहीं थे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद था। अभी उसके लिए तर्क सरकार की तरफ से मंत्री जी ने दिया है कि चूंकि उन्होंने संविधान की मूल प्रति बांटी, परंतु मेरा कहना यह है कि मूल प्रति में जब संशोधन हो गया तो फिर वो मूल प्रति अधूरी हो जाएगी जब तक कि संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में ही ये प्रावधान किए गए हैं कि तीन प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। नंबर एक संशोधन वो हैं जो एक सामान्य बहुमत से हो सकते हैं। नंबर दो संशोधन वो हैं जिनके लिए संसद का दो तिहाई बहुमत चाहिए और हिंदुस्तान की जो विधानसभाएं हैं उनकी भी 2/3 संख्या चाहिए, वहां से समर्थन चाहिए। और नंबर तीसरा खंड वो है जो अपरिवर्तनीय है, जो एक प्रकार का करके मूल ढांचा है वो अपरिवर्तनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तीन प्रकार के खंडों के लिए स्वीकार्य माना है। अब जो संविधान का संशोधन हुआ है 1976 में, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। ये एक प्रकार के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो आजादी के आंदोलन के भी लक्ष्य थे। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भी ये लक्ष्य हमारे सामने थे। इनको भिन्न शब्दों में हमारा जो संविधान का दो खंड है, एक खंड है मानव अधिकार का, मूल अधिकार वाला खंड है, और दूसरा खंड है नीति निर्देशक सिद्धांतों वाला खंड है, इन दो में शामिल किया गया था। ये विषय उसमें थे, उनका ही एक प्रकार का जो प्रतीकात्मक नाम है वो नाम है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। अब ये सरकार जो है ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाना चाहती है। तो आज जो सरकार है ये सरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सरकार है। दरअसल लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मोदी जी हैं। मेरी ये समझ है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए तो मोदी जी हैं, परंतु प्रधानमंत्री वास्तव में अगर है वो दुनिया के कॉर्पोरेट हैं जो देश की सरकार को चला रहा है। इसलिए ये सरकार जो है ये पूंजीवाद को यहाँ पर एक व्यवस्थित ढंग से लाना चाहती है। ये हिंदुस्तान के संविधान के से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा करके और यहाँ पर अपने एक धर्म का राष्ट्र बनने की कल्पना को राष्ट्र बनाना चाहती है। ये उन्होंने एक जान के ऐसा काम किया है जिसमें शुरू हो कि देखो साहब मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था, ये शब्द नहीं थे, और मूल संविधान में क्या धर्मनिरपेक्षता नहीं थी? अगर मूल संविधान में प्रावधान किया गया था कि आप किसी भी धर्म के बारे में निंदा की आलोचना की बात नहीं कहेंगे, घृणा की बात नहीं कहेंगे, नंबर दो राज्य सरकार की जो सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, सरकारों किसी एक धर्म के ऊपर नहीं चलेंगी, सरकारें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगी, तो क्या इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं हुआ? अगर संविधान में ये प्रावधान थे कि हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, बराबरी का लक्ष्य होना चाहिए, इंसान के लिए रोजी रोटी का अधिकार मिलना चाहिए, इंसान इंसान के फर्क कम होना चाहिए, तो क्या ये समाजवाद नहीं है? तो भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द और धर्म का शब्द 1950 में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया था, परंतु जो खंड है, मूल अधिकार का जो खंड है, जो नीति जैसे सिद्धांत वाला खंड है, इन खंडों में वो प्रावधान किए गए थे, जो प्रावधान समाजवाद के हैं, जो प्रावधान निरपेक्षता के हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार जान करके एक ऐसा संबंध कर रही है जितना की उसके पीछे कारण है कि सरकारी संविधान से पहले का कि सरकार की जो मातृ संस्था है वो मातृ संस्था का विश्वास है हिंदू राष्ट्र बनाने में है, धर्म व्यवस्था में नहीं है। इनकी मातृ संस्था का जो विश्वास है वो इसको कहना चाहिए मुक्त व्यापार में है, जिसको अंग्रेजी में लेजर शेयर कहा जाता है। इनका विश्वास समता और समानता में नहीं है। ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, ये सरकार कारपोरेट की सरकार है, उसका विश्वास कारपोरेट और मल्टी रिसर्च की जो इकोनॉमी है उसमें है, इसलिए इनको ये शब्द बाधित करते हैं। इन शब्दों के आधार पर कभी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए ये इन शब्दों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग इसको नहीं करने जाएंगे।
भाई साहब जी, आज इस अवसर पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी संविधान से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को हटाना जिसका सर्वत्र चर्चा हुई है, विरोध हो रहा है, और लोकतंत्र में विपक्ष एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान में सरकार विपक्ष को महत्व ही नहीं दे रही है, इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे?
ये सरकार जो है ये विपक्ष को महत्व नहीं दे रही है, इसका कारण है कि इसका मानस लोकतांत्रिक नहीं है। ये विपक्ष जो होता है वो सरकार का सबसे बड़ा सहायक होता है, इस अर्थ में सहायक होता है कि वो सरकार की कमियों को बताता है, उन कमियों को सरकार दूर का भी छवि सुधार सकते हैं, वो आपके लोकतंत्र को जिंदा रहने का सबूत होता है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रतिपक्ष ना हो क्या उसे लोकतंत्र माना सकता है? जिस प्रणाली में लोकतंत्र नहीं होता, प्रतिपक्ष नहीं होता है, वो प्रणाली एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही की प्रणाली होती है। आज चीन में प्रतिपक्ष नहीं है, आज रूस में प्रतिपक्ष नहीं है, परंतु भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, जहां पर लोकतंत्र है वहां पर प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। तो प्रतिपक्ष को खत्म करके सरकार एक दलीय तानाशाही की सरकार बनाना चाहती है, और ये जो प्रयास है ये प्रयास भी उनके छिपे हुए जो नक्शे हैं उसके आधार पर खड़े हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि इससे इस देश को भारी क्षति होगी, इस देश की एकता को बचा के रखना कठिन जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है ये संविधान अकेली एक मामूली किताब नहीं है, बल्कि संविधान एक प्रकार से हमारा चार्टर ऑफ एग्रीमेंट है। आजादी के बाद जो भी लोग देश में शामिल हुए उन्होंने इस संविधान के आधार पर अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक माना है। तो ये जो बेसिक चार्टर ऑफ एग्रीमेंट है इसको खंडित करने कोई प्रयास अगर सरकार करती है तो वो प्रयास है एक प्रकार से देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगा।
भाई साहब, हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है और भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आपने किताब भी लिखी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी पर, तो हम उस किताब के संबंध में भी आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें आपने अपने शब्दों में किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी को वर्णित किया है।
गांधी और अंबेडकर के बीच में कुछ लोग एक प्रकार की तोतारंट विरोध बताने की बात करते हैं। हम मान सकते हैं कि कुछ बाबा साहब के शब्द कटु थे जो उन्होंने गांधी जी के प्रति बोले, परंतु वो शब्द केवल शब्द थे, उनका मन नहीं था। जो गांधी और अंबेडकर के बीच के विचारों की शुरुआत है उसको जरा हम लोग देखने का काम करें। बाबा साहब जो थे वो जिस जमात में पैदा हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था, उसने बचपन से लगातार एक प्रकार की अस्पष्टता को भाव को अस्पष्टता की चीज को जिया था और तकलीफ उठाई थी। गांधी समाज के संपन्न और बड़े परिवार में पैदा हुए थे, पर गांधी भी अपने आरंभ से ही छुआछूत के अस्पष्टता के खिलाफ थे। एक फर्क होता था कि गांधी मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था फर्क है, वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था में अस्पष्टता नहीं होती है, वर्ण व्यवस्था गुणात्मक होती है, जैसा कि हमारे जो पुराने सांस्कृतिक या धार्मिक ग्रंथ है उनमें कहा गया था। पर जब गांधी को महसूस हुआ कि नहीं, जाति प्रथा जो है ये ही इस भेदभाव का कारण है, तो गांधी ने उस जाति प्रथा को भी छोड़ दिया और गांधी ने भी एक प्रकार से वही स्वर में, उन्हीं शब्दों में, उससे भी कठोर शब्द बात करना शुरू की जो बाबा साहब करते थे। गांधी जी ने तो एक जगह ये तक कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान की हर सवर्ण लड़की से कहूंगा, उसको सलाह दूंगा कि जो अनुसूचित जाति की है, उस समय के हरिजन या दलित लोग जो थे, उनके जो योग्य बच्चे हैं उनके साथ शादी ब्याह करें। गांधी ने ये तक कहा कि अगर कोई पुनर्जन्म होता हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे एक जन्म में भंगी बना जाए। गांधी ने अपने आप को बेहतर बनाने का काम किया। गांधी कहते थे कि अगर मैं कोई मेरी कोई जात है तो मैं बेहतर हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं चमार हूँ, यानी इन वर्गों के साथ वो उनकी पीड़ा के साथ में एकाकार होना चाहते थे। और इस मामले में गांधी बहुत क्रांतिकारी हैं। बाबा साहब तो जमात से आए थे, उनके अपनी जमात का एक हित भी था, पर गांधी का अपना कोई हित नहीं था, उनकी जमात का कोई हित नहीं था। गांधी तो एक प्रकार से मानवता के हित में बातों के कह रहे थे। दूसरी बात जो पूना पेट को लेकर कही जाती है, तो लोग भूल जाते हैं कि पूना पेट के बाद खुद अम्बेडकर साहब ने बयान दिया कि अगर कोई ये कहता है कि पूना पेट से कुछ हासिल नहीं हुआ तो गलत कहता है। पूना पेट में जो हमें मिला है वो उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उनके ही शब्द हैं कि हमने जो मांगा था उससे दोगुना हमको मिला, और इसके पीछे केवल महात्मा गांधी का योगदान है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि मुझे आज इस बात पर आश्चर्य है कि ऐसा रुख गांधी जी ने पहले क्यों नहीं बताया, शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। तो पूना पेट के परिणामों को भी बाबा साहब समझ रहे थे। उन्होंने कहा, अपने लोगों से कहा कि भाई आप लोगों को इस तंत्र में प्रवेश करने का मौका मिला है, आप जाके वहां बदलाव करने का काम करिए। तो पूरा पेट को लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के भी कोई बेसिक या कोई बुनियादी फर्क नहीं है। इसी बात के एक बात का फर्क और था कि जब साइमन कमीशन आया था तो उस समय पे बाबा साहब अम्बेडकर की जो राय थी वो थी ये ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, या जिनको भी आजकल हम अनुसूचित जनजाति के तौर के लिए वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। परंतु जब संविधान बना तो गांधी की सलाह और गांधी की राय के अनुसार, और जब बाबा साहब को इसका ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन गांधी जी ने बनवाया, तो उन्होंने संविधान में जो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार बकाया पूरे देश को दिया गया, सवर्ण को दिया, अवर्ण को दिया, एससी को दिया, उसी अधिकार की सिफारिश उन्होंने आदिवासियों के लिए की। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भविष्य का हमारे सामने लक्ष्य है, वो लक्ष्य विषमता को मिटाना है, समता को लाना है। दुनिया कहते थे कि सात क्रांतियां आवश्यक है, तो सात क्रांतियों में आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, लिंग भेद की समानता, आपके रंग भेद की समानता, ये सारी समानताएं, इसके साथ साथ विश्व संसद और हथियारों की निशस्त्रीकरण की कल्पना थी। तो आज गांधी और अंबेडकर के बीच में अगर कोई फर्क खोजता है तो उसका परिणाम निकल गया कि इनके जो मानने वाली जमातें हैं, जो दोनों ही समाजवाद की ओर उन्मुख हैं, जिनको समाजवाद की आवश्यकता है, जिनको बराबरी की आवश्यकता है, उनके बीच में एक फाट पड़ेगी वो भी नकली सवाल को लेकर के। उसका परिणाम निकलेगा कि पूंजीवाद या कारपोरेटिज्म जीत जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश में कारपोरेट इकोनॉमी को हराना है, पूंजीवाद को हराना है, समता और बराबरी का दर्शन लाना है, अम्बेडकर चाहते थे कि जो हमारा संविधान है वो संविधान ही समाजवादी संविधान बने। वो कहते थे कि हम संवैधानिक समाजवाद चाहते हैं। तो ये सरकार तो समाजवाद से हटाना चाह रही है। जो सरकार समाजवाद के शब्द को हटाना चाह रही है वो अंबेडकर की तो खराब ही सरकार हुई। तो हमारे उन लोगों से कहना है, गांधी के अनुयायियों से भी और अंबेडकर के अनुयायियों से भी, आप लोग आपस में लड़ाई न करें। गांधी और अंबेडकर की मूल भावना एक है, दोनों मानवता के विकास में, मानवता के पक्ष में थे, इसलिए आप इन दोनों को साथ लेके चलें और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदले।
भाई साहब, जैसा कि आपने अभी अपने किताब में भी लिखा और आपने पक्ष विपक्ष कार्यक्रम के दौरान जो आपने महत्वपूर्ण बातें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर कही, इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अनेकता में एकता के दर्शन कराता है। और ऐसे समय में यदि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द यदि हटा दिया जाता है तो देश किस दिशा में जाएगा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए क्या है कि शब्द पंथ निरपेक्षता कहिए धर्म निरपेक्षता कहिए, इसका अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता शब्द को भी मैं अधूरा मानता हूँ, धर्म निरपेक्षता शब्द को पूरा मानता हूँ। इसलिए कि धर्म निरपेक्षता के दो पहलू हैं, एक है व्यक्ति के लिए, एक है सत्ता के और शासन के लिए। व्यक्ति के लिए धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि आपको अपने धर्म को मानने की आजादी रहेगी, आप मानिए, परंतु अन्य धर्मों के प्रति आपका तिरस्कार या घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है धर्म निरपेक्षता का जो पहलू है वो है सरकार के लिए, सत्ता के लिए, कि सरकार को कोई धर्म नहीं मानना चाहिए, सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये है धर्म निरपेक्षता का भाव। पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ अगर हो सकता है तो भी इसी प्रकार का अर्थ हो सकता है। अब सवाल दूसरा इस प्रकार का होता है कि आज जो सरकार है ये एक सरकार क्या पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष सरकार है? ये सरकार तो सरकार के यानी जनता के पैसे से धर्म के नाम का जो प्रकार के दिखावा है या धर्म के नाम की जो क्रियाकलाप है वो कर रही है। धर्म का मतलब मंदिर बनाना या पूजा पाठ करना या नमाज पढ़ लेना या वुजू कर लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि जो उसके जो मूल तत्व है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का मूल तत्व क्या है? गांधी की प्रार्थना थी, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़े पराई जाने दे। खुद तुलसी ने क्या लिखा, तुलसी ने क्या कहा, परहित सरस धर्म नहीं बाही पर पीड़ा सब नहीं अदबाई। तो दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे की पीड़ा को समझना और उसके प्रति एक प्रकार का भाव रखना कि नहीं हमें इस पीड़ा को दूर करना है, ये धर्म है। लोहिया कहते थे कि धर्म अल्पकालिक राजनीति है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। यानी जो समाज को बदलने के 1500 समाज के साल के बाद के लक्ष्य हो सकते हैं, स्थायी स्थिर को शाश्वत मूल कहते हो सकते हैं, वो धर्म है। और 150 साल में देश की व्यवस्था कैसी रहे, कैसी बने, क्या हो, ये राजनीति है। राजनीति और धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसलिए लोहिया ने जो धर्म की परिभाषा की, जो धर्म की बताया, वो कहते थे कि धर्म का मतलब है अच्छाई करना और राजनीति का मतलब है बुराई से लड़ना। जब आप बुराई से लड़ते हैं तो आप राजनीति करते हैं, और अच्छाई करते हैं तो आप धर्म करते हैं, आप भूखे को खाना खिलाते हैं, ये धर्म है। परंतु एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को भूखा बनाती है उससे आप लड़ते हैं तो ये आपकी राजनीति है। इसलिए राजनीति और धर्म के बीच कोई फर्क नहीं है। ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द आप चाहिए इस्तेमाल कर ले, कुल मिला के लक्ष्य यही है कि सरकारें से दूर रहे। आजकल क्या हो रहा है, अभी सरकारें कह रही साहब मंदिर हम बनाएंगे, अभी सरकारें कह रहे हैं कि साहब पुजारी की तनख्वाह हम देंगे, फिर सरकारें कहें कि साहब मौलवी साहब इमाम साहब की तनख्वाह हम देंगे, कल फिर पादरी साहब की तनख्वाह देंगे, परसों गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब की तनख्वाह देंगे। ये काम सरकार का नहीं है, ये काम उन लोगों का है जो उसके अनुयायी हैं। मंदिर के पंडितों की जो पेट की जरूरतें हैं उनको पूर्ति करने का काम हजारों साल से हिंदुस्तान का हिंदू समाज करता रहा। वो मंदिरों को जमीन लगाता था, कभी नहीं सी लगाई जाती थी कि साहब इससे पंडित जी का पेट चलेगा और ये पूजा करते रहेंगे। आपके जो इमाम साहबान हैं उनको जो मदद मिलती थी वो बजट के जो लोग बनाने वाले या रिवाज करने वाले वो देते थे, या फिर वक्फ बोर्ड से मदद मिलती थी। आपके क्रिश्चियंस लोग हैं उनके यहाँ चर्च के जो पादरी या फादर होते हैं उनको जो एंडोमेंट रहता है उससे पैसा मिलता है। ग्रंथी लोग जो हैं, गुरुग्रंथ साहब ऐसा सिख समाज के जो लोग हैं उनका जो धर्म के नाम के लोग पैसा देते हैं उससे वो लोग पैसा लाते हैं। तो सरकार का काम ये काम करना नहीं है। सरकार का काम ये है कि सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, सरकार कोई धार्मिक पचड़ों में ना पड़े। मैं आपको गांधी की एक उदाहरण बताता हूँ कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और सोमनाथ मंदिर, इसके लिए कहा जाता है कि भाई जो मुगल आक्रमक लोग थे खंडित किया और सही बात थी, तो उसको पुराण निर्माण की बात आई। वल्लभ भाई पटेल ने और वहाँ के लोगों ने तय किया, वल्लभ भाई जी गृहपति थे हिंदुस्तान के, सरकार से उनकी बात हुई, जवाहरलाल नेहरू से की बात हुई, ये हुआ कि साहब यहाँ मंदिर का पुनः निर्माण करना है। तो गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई आपको मंदिर का पुनः निर्माण करना है तो जो इस धर्म के मानने वाले उसके अनुयायी लोग हैं उनके पैसे से बनाइए, इस बार सरकार का एक पैसा भी लगना चाहिए और सोमनाथ के मंदिर में एक पैसा भी सरकार ने कर ही लगा। अभी क्या हो रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, कई हजार करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। भगवान राम को लोग माने, मुझे कोई उस पर नहीं है, कोई माने तो मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं हो, कोई नहीं मानता तो उससे भी परेशानी नहीं। ये अपनी अधिकार को मानता हूँ, इसको मानना है माने, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई क्या मंदिर के निर्माण करने काम सरकार का होता है? क्या ये पैसा लगाना काम सरकार का होता है? आप देखिए कि उज्जैन में महाकाल लोग बन रहा है, भाई अच्छी बात है कि महाकाल लोग तैयार हो, इतना फंड क्या आता है, उस पर से तैयार चाहिए, परंतु सरकार के पैसे लगाना। तो सरकार जो है ये एक प्रकार से एक धार्मिक संस्था की ओर बढ़ना चाहती है। सरकार धर्म से हटके अधर्म के रास्ते पर चल रही है। अगर हजारों साल से धर्म की संस्थाएं स्वतंत्र और आजाद रूप से चली हैं, तो समाज के द्वारा चली हैं, तो अब उन संस्थाओं को सरकार पोषित बनाना, इन धर्म को सरकार पोषित बनाना है, ये अधर्म है, धर्म नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने महत्वपूर्ण विषय पक्ष विपक्ष के तहत आपने सारगर्भित बातें रखी जिसकी नितांत आवश्यकता आज देश को है। इसके लिए मोबाइल वाणी पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मोबाइल वाणी को दुर्गा जी आपका बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की और कुछ बातों को देश के सामने पहुंचाने का आपके माध्यम से प्रयास होता है। आपका जो एक प्रकार का सामाजिक सरोकार है और जन सरोकार है, इसको मैं लगातार देखता हूँ और मुझे खुशी है कि मोबाइल वाणी आज के इस दौर में एक आदर्श पत्रकारिता का माध्यम है। आप सबको धन्यवाद।